सभी को नमस्कार। गुरुदेव जी के भावपूर्ण स्मरण से, उन्हें आर्तता से प्रार्थना करते हुए आज के भाव सत्संग का हम आरंभ करेंगे। गुरुदेव जी का स्मरण करते ही अपनी आंखों के सामने गुरुदेव जी का सुंदर, मनमोहक एवं तेजोमय रूप दिखाई देने लगा है। गुरुदेव जी के दिव्य रूप के हम दर्शन लेंगे। अपना अंतरंग गुरु कृपा से अनुभव किए सुंदर भावक्षणों के स्मरण से डोलने लगा है। इस भावमय स्थिति में ही अब हम गुरुदेव जी के परम चरणों की शरण जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे। हे गुरुदेव, हमारे उद्धार के लिए, हमारा जीवन सार्थक करने के लिए आप ही हमें अपनी चैतन्यमय ऊर्जा, आपका प्रचंड तेज और शक्ति के माध्यम से प्राणवायु प्रदान कर रहे हैं। हम साधकों को जीवित रहने के लिए आप श्वास प्रदान कर रहे हैं। हमारी प्रत्येक श्वास आप ही की कृपा है। गुरुदेव, आपके सुंदर दिव्य भावक्षणों के कारण अब भी हमारा हृदय मंदिर आपके प्रति भावभक्ति से भर गया है। हे गुरुदेव, हमारे जन्मदाता कर्मदाता तो आप ही हैं, इसीलिए हमारी प्रत्येक श्वास पर भी केवल आप ही का अधिकार है। आप जो हमें श्वास प्रदान कर रहे हैं, उस प्रत्येक श्वास द्वारा हम आपके चरणों में समर्पित हो पाए। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रार्थना है। सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और अनादि अनंत साक्षात गुरुदेव जी के चरणों में श्लोक के माध्यम से हम भावपुष्प अर्पण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। भाव सत्संग द्वारा भक्ति पाठ सीखने आए सभी गुरु भक्तों को मेरा भावपूर्ण नमस्कार।
हम सभी के कल्याण के लिए भगवान श्री विष्णु का तत्व अब प्रतिक्षण बढ़ता ही जाने वाला है। भगवान अब हमें भरपूर देने वाले हैं। हम सभी अपने अंतर की भक्ति बढ़ाएंगे और भगवान नारायण का तत्व, उनकी ऊर्जा और उनका चैतन्य ग्रहण करेंगे। अब भगवान नारायण के वृद्धिंगत हो रहे इस दिव्य तत्व की अनुभूति लेने के लिए और एक दिव्य अवसर हमें मिल रहा है, और वो है वैकुंठ चतुर्दशी। हमारे रोम रोम में भक्ति निर्माण करने के लिए भगवान एक भी अवसर नहीं छोड़ते। इस भक्ति सत्संग के माध्यम से हमें अनमोल दिशा दर्शन कर रहे हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के उपलक्ष्य में आज के इस दिव्य भक्ति सत्संग से हम श्री विष्णु भक्ति का पाठ सीखेंगे। अपने अंतरंग में श्री विष्णु की भक्ति अंकित कर श्री विष्णु कृपा संपादन करेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी की महिमा हम सभी को पता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को बुलाकर वैकुंठ धाम के द्वार खुले रखने का आदेश देते हैं। अर्थात इस दिन सभी भक्तों के लिए वैकुंठ के द्वार तो खुले होते हैं। जो जीव इस दिन भक्तिपूर्वक श्री विष्णु का पूजन और नामस्मरण करता है, उसका स्थान श्री विष्णु के दिव्य वैकुंठ धाम में सुनिश्चित हो जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के उपलक्ष्य में श्री विष्णु के दिव्य वैकुंठ धाम की अनुभूति लेने के लिए हमें अपने अंतर में भक्ति वृद्धिंगत करना अपेक्षित है। और ये भक्ति वृद्धिंगत करने हेतु कैसे प्रयत्न करने चाहिए, ये सीखने के लिए भगवान हमें आज का ये भक्ति सत्संग भी दे रहे हैं। विष्णु भक्ति की सीख देने वाले इस भक्ति सत्संग के माध्यम से श्री विष्णु हम सभी के लिए साक्षात वैकुंठ लोक का महाद्वारी खोल रहे और हमें साधना की अगली दिशा देने वाले हैं। भगवान की इस दिव्य भावलीला के विषय में उनके परम पावन सुकोमल श्री चरणों में अनंत कोटि 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 हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। श्री विष्णु भक्ति की महिमा अपरंपार है। श्री विष्णु भक्ति की और वो भक्ति करने वाले की अर्थात श्री विष्णु भक्त की महिमा पुराणों में किस प्रकार बताई है उसे अब हम सुनेंगे। इससे श्री विष्णु की उत्कट भक्ति करने का महात्म्य हम अपने अंतर्मन पर अंकित करेंगे। हमें भी श्री विष्णु की भक्ति वृद्धिंगत करनी है, इसकी प्रेरणा लेकर विष्णु भक्ति सीखेंगे। श्री विष्णु भक्ति की महिमा बताते हुए श्री सनक ऋषि कहते हैं, जो सदैव भगवत भक्ति का मधुर रस का रसपान करते हैं अर्थात सदैव श्री विष्णु की भक्ति में रममाण होते हैं और उस कारण सदैव प्रसन्न चित्त आनंदी रहते हैं, ऐसे मानव वास्तव में श्रेष्ठी होते हैं। ऐसे श्रेष्ठ एवं खरे भगवत भक्तों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ऐसे श्रेष्ठ मानवों के सान्निध्य में सामान्य मनुष्य को भी मोक्ष प्राप्ति का भाग्य मिलता है। जो भक्त खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान श्री विष्णु के नाम का चिंतन करते हैं, उन्हें प्रतिदिन बार बार प्रणाम है। जिनका मन श्री विष्णु की भक्ति में रममाण है वे अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। योगियों के लिए दुर्लभ ऐसी मुक्ति भक्तों के हाथों में ही होती है। भगवान की भक्ति करने वाले जीव को वो अविनाशी परमात्मा अवश्य मोक्ष देते हैं और इसीलिए भगवान का उस गोविंद का सदैव आश्रय ले। जो विष्णु भक्त निष्काम भाव से उस परम परमेश्वर श्रीहरि की उपासना करता है वो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ वैकुंठ धाम जाता है। हम सभी इसका स्मरण करेंगे और हमेशा हम ध्यान में रखेंगे। योगियों के लिए दुर्लभ ऐसी मुक्ति भक्तों के हाथों में ही होती है तथा भगवान की भक्ति करने वाले जीव को वो अविनाशी परमात्मा अवश्य मोक्ष देते हैं और इसीलिए भगवान का उस गोविंद का सदैव आश्रय ले। जो विष्णु भक्त निष्काम भाव से उस परम परमेश्वर श्रीहरि की उपासना करता है वो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ वैकुंठ धाम जाता है। ऐसी है श्री विष्णु भक्ति की महिमा। भगवान की भक्ति करने से ही भक्त का महत्व बढ़ता है। फिर भक्ति करने वाले कोई जीव भले ही सामान्य हो तब भी भगवान की दृष्टि से आध्यात्मिक क्षेत्र में उसे उच्च स्थान मिलता है, कारण भक्ति रूपी दुर्लभ संपत्ति उसे प्राप्त होती है। ऐसी भक्ति रूपी दुर्लभ संपत्ति प्राप्त होने हेतु हम कैसे प्रयत्न कर सकते हैं, इस विषय में आज के सत्संग में हम सीखेंगे। अपने अंतर में भगवान के प्रति भाव एवं भक्ति होगी तभी हम भगवान के दिव्य श्री चरणों का सतत आश्रय ले सकते हैं। हम भगवान के परम भक्त बन गए तो भगवान ही उसे अपेक्षित ऐसा बनाता है और भक्त के लिए योग्य ऐसा स्थान भी उसे प्रदान करता है। श्री विष्णु ने भक्ति करने वाले बालक ध्रुव को अटल अर्थात विशेष पद दिया। भगवान के लिए भक्त का स्थान सदैव उच्च ही होता है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं और सदैव वे प्रतिक्षण भक्त के उद्धार का, उसके कल्याण का ही विचार करते हैं। भक्त का महत्व केवल भगवान जानते हैं। भगवान की दृष्टि में भक्ति करने वाले भक्त का महत्व क्या है, ये रहस्य आज हम महाविष्णु के एक परम भक्त देवर्षि नारद एवं स्वयं महाविष्णु के सुंदर संवाद से समझ लेंगे। एक बार देवर्षि नारद के मन में ये जानने की इच्छा उत्पन्न हुई कि इस संपूर्ण जगत में सबसे महान कौन है। इसका खरा उत्तर तो भगवान श्री विष्णु को ही पता होगा, कारण भगवान ही नित्य सत्य है, सर्वज्ञ है, करण करावनहार भी वे ही है। फिर मन की शंकाओं का निरसन करने के लिए देवर्षि वैकुंठ लोक गए। वे श्री विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान को भक्तिपूर्ण नमन किया और पूछा, हे जगत पालक, मेरे मन में एक प्रश्न निर्माण हुआ है। आप सर्वज्ञानी हैं, इसलिए मेरे मन की शंकाओं का निरसन करवाने के लिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। हे भगवान, आप मेरी शंकाओं का निरसन करें। अंतर्यामी भगवान ने मित हास्य किया। सभी का अंतर्बाह्य जानने वाले भगवान से क्या छिप सकता है। नारद के मन के भाव उन्होंने पहचान लिए। उनकी शंका, मन के प्रश्न और वे किस लिए यहाँ आए थे, वो सब कुछ भगवान पहले ही समझ गए। तब भी उनके मुखमंडल पर ऐसा भाव था जैसे उन्हें कुछ पता नहीं। उन्होंने कौतूहलवश नारद से पूछा, हे परम भक्त नारद, आप तो प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं, देवर्षि हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी बात नहीं जो आप नहीं जानते, फिर आपके मन में कौन सी शंका है। तब नारद मुनि बोले, भगवन, मैं ज्ञान स्वरूप ब्रह्मदेव का पुत्र भले ही हूँ, परंतु सर्वज्ञानी तो आप ही है। अखिल ब्रह्मांड में आप जैसा अंतर्ज्ञानी अन्य कोई भी नहीं, और इसीलिए तो मैं आपकी शरण आया हूँ। हे भगवान, इस जगत में सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे महान कौन है, ये बताने की कृपा करें भगवान। नारद के मन की शंकाओं का निरसन करने हेतु भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, परमात्मा द्वारा निर्माण किए गए इस विशाल ब्रह्मांड की पृथ्वी अत्यंत विशाल है, परंतु वह पृथ्वी वो भी सभी ओर से समुद्र से घिरी है। इसीलिए उस अत्यंत विशालकाय पृथ्वी को हम बड़ा नहीं कह सकते। फिर पृथ्वी से समुद्र को बड़ा कहेंगे क्या? तो वैसा भी नहीं, समुद्र भी बड़ा नहीं, कारण समुद्र का तो अगस्त्य ऋषि ने प्राशन किया था, इसलिए अगस्त्य ऋषि समुद्र से बड़े हैं। परंतु अगस्त्य ऋषि सबसे बड़े हैं ऐसा भी नहीं कह सकते। फिर उनसे बड़ा कौन है? अगस्त्य ऋषि एक तारे के रूप में आकाश में चमकते हैं। तारा आकाश में होता है, अर्थात निश्चित रूप से तारे से बड़ा है आकाश। यह सुनकर देवर्षि नारद को लगा, सबसे महान आकाश है। उतने में ही श्री विष्णु पुनः बोले, परंतु नारद, आकाश भी सबसे महान नहीं, आकाश से बड़ा कौन है? तो भगवान वामन, दैत्यराज बलि के यज्ञ में भगवान वामन ने अपने एक पैर से आकाश को ही व्याप लिया था, अर्थात आकाश से भी बड़े हैं भगवान वामन, अर्थात महाविष्णु का वामन रूप। ये सुनकर देवर्षि नारद को आनंद हुआ। भगवान वामन के रूप की महिमा उन्हें ध्यान में आई। वे तो नारायण के अवतार हैं, इसलिए देवर्षि नारद उन श्रीमन नारायण को कोटि कोटि वंदन करने लगे। साक्षात भगवान महाविष्णु से बोले, हे भगवन, इसका अर्थ ये हुआ ना कि मैं जिसकी भक्ति करता हूँ वो भगवान ही सबसे महान है, उनका ही रूप सबसे श्रेष्ठ है, वो भगवान ही सबसे बड़े हैं। मैं कितना भाग्यवान हूँ कि ऐसे भगवान का मैं भक्त हूँ। इस प्रकार नारद कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। स्वयं नारायण भक्त होने के विषय में उन्हें आत्यंतिक कृतज्ञता लग रही थी, परंतु उनका बोलना रोकते हुए भगवान आगे बोले, हे नारद, मेरा बोलना अब भी पूरा नहीं हुआ है। इस जगत में भगवान ही सबसे महान है, ऐसा मैंने कब कहा? मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कोई तो है जो भगवान से भी बड़ा है। ये सुनकर देवर्षि नारद को आश्चर्य हुआ। सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म स्वरूप भगवान से भी श्रेष्ठ कौन हो सकता है भला? वे तो विचार करने लगे। तब श्री विष्णु उनसे बोले, हे नारद, भगवान का वामन रूप निश्चित ही आकाश से भी व्यापक है। ये सत्य है कि उनके चरणों ने विशाल आकाश को भी व्याप लिया, परंतु वे आकाश से भी व्यापक अति विशाल भगवान के चरण निरंतर तुम जैसे भक्तों ने अपने हृदय में धारण किए हैं। इसलिए जगत में सबसे श्रेष्ठ भगवान नहीं, अपितु भगवान से भी श्रेष्ठ है भगवान के भक्त। हे परम भक्त नारद, हे भक्त श्रेष्ठ, आप इस जगत में सबसे महान हैं। जिसने विशाल भगवत चरणों को भी अपने हृदय में धारण किया है। हे नारद, भक्त से बड़ा कोई भी नहीं। भगवान की दृष्टि से देखे तो भक्त भगवान से भी श्रेष्ठ है, भक्त ही महान है। भगवान श्री विष्णु जब भक्त की श्रेष्ठता का सूत्र बता रहे थे, तब उसे सुनकर परम भक्त देवर्षि नारद की अत्यंत भाव जागृति हुई। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। किसी अभिमानी पुरुष समान अपनी प्रशंसा न करते हुए श्री विष्णु ने बताया कि भगवान की दृष्टि में भक्त का कितना महत्व है। उनके ध्यान में आया कि भगवान अपने भक्त को अपने से कितना अधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त के नारद के मन की शंका का निरसन किया। परमेश्वर समस्त सृष्टि का संचालन करता है, अखिल विश्व का भार लेता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड को संभालता है, परंतु उनसे भी उनका भक्त श्रेष्ठ है। जो भगवान के विशाल श्री चरणों को अपने हृदय मंदिर में धारण करता है, वो भक्त इस जगत में सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा साक्षात भगवान कहते हैं। भगवान की अहम शून्यता कितनी अद्भुत है। भक्त की महिमा बताने के लिए भगवान की ये सुंदर लीला ही थी। इस छोटे से संवाद से भगवान की लीला का और एक पहलू उजागर हुआ। वे किसी भी बात का कर्तापन स्वयं नहीं लेते। भगवान को अपने भक्त अत्यंत प्रिय होते हैं। भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसीलिए तो उन्होंने देवर्षि नारद का शंका निरसन करते हुए अत्यंत सहजता से अपने भक्त को श्रेष्ठ बनाया और महान सिद्ध किया। जिस भगवान ने स्वयं सर्वव्यापी होते हुए भी अपने भक्त को श्रेष्ठ बनाया, उस भगवान के श्री चरणों में हम नतमस्तक होंगे। भगवान के दिव्य और विश्वव्यापी श्री चरणों को हम हृदय में धारण कर भगवान के परम भक्त बनने का प्रयत्न करेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी के उपलक्ष्य में भगवान वैकुंठ के महाद्वार खोलने वाले ही हैं। वह भक्तवत्सल श्रीहरि ही हमारा हाथ पकड़कर इस भक्ति पथ पर हमें आगे लेकर जाने वाले हैं। परंतु हम अपने अंतर की भक्ति वृद्धिंगत कर वैकुंठ के इस दिव्य भक्ति पथ पर अग्रसर होंगे। अब हमें अपनी आंतरिक भक्ति बढ़ाने के लिए कृति के स्तर पर ध्येय रखकर कैसे प्रयास करने हैं, उसके कुछ सूत्र समझ लेंगे। हमारी प्रत्येक कृति, फिर वो व्यक्तिगत हो अथवा सेवा, उसे करते समय भी भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, श्रीमन नारायण के लिए ही कर रहे हैं। वो गुरु सेवा ही है। इस भाव से अधिकाधिक मनपूर्वक अंतर के समस्त भाव से ओतप्रोत होकर हम ये कृति करेंगे। श्री विष्णु का अस्तित्व अपने हृदय में अनुभव करेंगे। प्रत्येक सेवा अथवा प्रत्येक कृति करते समय अपने हृदयस्थ श्री विष्णु के श्री चरणों पर हम पुष्पार्चना कर रहे हैं, इसकी प्रचिति लेंगे। प्रत्येक कदम बढ़ाते समय हम ऐसा भाव ही रखेंगे कि वो कदम साक्षात श्रीहरि की दिशा में ही पड़ रहा है। इस प्रकार अपनी विविध कृतियों को भक्ति की जोड़ देंगे और भक्ति प्रयत्न करेंगे। अपने हृदय में श्री विष्णु भक्ति वृद्धिंगत होने हेतु हम प्रयत्न करेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी के उपलक्ष्य में अंतर में अधिकाधिक विष्णु भक्ति जागृत कर प्रतिक्षण श्री विष्णु भक्ति करने वाले विष्णु भक्त बनेंगे। विष्णु भक्ति द्वारा वैकुंठ की अनुभूति लेंगे। अपना प्रत्येक कदम भगवान की दिशा में बढ़े, इसके लिए आप ईश्वर प्राप्ति की आंतरिक लगन बढ़ाएंगे। वैकुंठ पथ पर अग्रसर होते समय हमें बोधामृत प्राप्त होता है, अनेक दिव्यानुभव भी प्राप्त होते हैं। भूतल पर वैकुंठ की अनुभूति देने वाले पंढरपुर की यात्रा करते समय आए दिव्य अनुभवों का वर्णन करने वाला भक्त के मन का हृदयंगम मनोगत सुनेंगे और इसे सुनते समय हम भी ये अनुभूति लेंगे, मानो हम भू वैकुंठ की ही तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। भक्ति प्रयत्न रूपी प्रत्येक कदम चलते समय साक्षात श्रीहरि के दिशा में मार्गक्रमण कर रहे हैं, ऐसा भाव रखेंगे। हे भगवन, हे श्रीहरि, हम इस अथांग भवसागर की मंझधार में फंसे थे। आपसे दूर ले जाने वाला, माया जाल में अटकाने वाला ये प्रपंची अब तक हमें मधुर लग रहा था और उसी में सुख भी लग रहा था। परंतु अब हम इस संसार रूपी माया जाल का त्याग कर आपके पास आने के लिए निकले हैं। हे श्रीहरि, हम आपकी दिशा में इस मोक्ष मार्ग पर मार्गक्रमण कर रहे हैं। आप ही हमें शक्ति दें और आप ही हमें मोक्षधाम की ओर ले चले। हम दोष, अवगुण और अहम में पूर्ण रूप से डूब गए हैं, दरिद्र हो गए हैं। कारण जिसके पास गुण संपदा का भंडार, भक्ति भाव की तिजोरी और ईश्वर के कृपाशीर्वाद नहीं होता, वे महादरिद्र ही होते हैं। हमारी अवस्था भी कुछ ऐसी है। उससे बाहर निकलने के लिए भक्ति प्रयत्न करने हेतु आप तक पहुंचाने वाली यात्रा आरंभ हो गई है। हे श्रीहरि, आपके चरण धामों में पहुंचने के लिए हमारे कदम साधना की दिशा में पड़ने दें। हे श्री विष्णु, हमारे कदमों में भाव भक्ति का बल आने दें और उसके लिए आप ही शक्ति दें और आप ही हमें मोक्षधाम तक लेकर चले। हे भगवान, आप तक पहुंचाने वाले इस दुर्गम मार्ग पर चलते समय कुछ को लगता है कि सब कुछ छोड़कर साधना करने वाले हम प्रवाह के विरुद्ध जा रहे हैं। इसलिए हमारे कुछ सगे संबंधियों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। हे भगवान, इस साधना पथ पर हमें भले ही किसी का भी साथ न मिले, तब भी आप अखंड हमारा साथ दे। हे भगवान, आपकी ही उंगली पकड़कर हम वैकुंठ का पदक्रमण कर पाएंगे और इसके लिए हे भगवान, आप ही हमें बल दे, शक्ति दे। हे भगवान, आपका भक्ति रूपी प्रसाद पाने के लिए हम अत्यंत व्याकुल हैं। उस भक्ति प्रसाद से ही हमारी आध्यात्मिक दरिद्रता का नाश होने वाला है। दोष, अहंकार, विकार, सद्गुणों का अभाव, ये सभी आध्यात्मिक दरिद्रता के लक्षण दूर करने के लिए हम आपको ही पुकार रहे हैं। आप ही हमारा उद्धार करें। हे श्रीहरि, आपके चरण धाम पहुंचने के लिए हमारे कदम साधना की दिशा में पड़ने दें। हे श्री विष्णु, आपके प्रति भक्ति अविरत रूप से हमारे मन में जागृत रहने दें। हमारे चरणों में भक्ति का बल आने दें और उसके लिए आप ही हमें शक्ति दें। आप ही हमें मोक्षधाम लेकर चले भगवान। आप हमें मोक्षधाम लेकर चले। हे दया घना, आप हमें मोक्षधाम लेकर चले। भगवान की कृपा से ये दिव्य भक्ति सत्संग संपन्न हुआ, इसलिए हम भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञता व्यक्त करेंगे।